भगवान राम जी ने धनुष भंग किया, श्री वैदेही ने जयमाला पहनाई और हमने गत संध्या को देखा कि उपस्थित समाज ने विरोध किया। समाज का यही रिवाज रहा कि जब किसी का भी जीवन भक्तिमय होता है, सत्यमय होता है, तब अगल बगल के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हो, हमसे कोई ऊपर उठ जाए वो हमको स्वीकार्य नहीं। इसलिए जिन जिन लोगों ने साधना और सत्य का पंथ पकड़ा है, इन लोगों के जीवन में ऐसी घटना सदैव बनी है। ऐसी घटना के लिए साधकों को तैयार रहना चाहिए। बहुत बलवा किया लोगों ने, लेकिन धनुष भंग की आवाज सुनकर भगवान परशुराम जी आते हैं। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल कमल पतंग, स्वामी जी को किसी ने कहा कि आपने राम जी को भी सूर्य की उपमा दी और परशुराम जी को भी सूर्य की उपमा दे रहे हैं, एक दिन में दो सूर्य को आप मिला रहे हैं, ये कैसा? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि राम वो सूर्य है जो उदित होने वाला सूर्य, यानी उदित हुआ सूर्य, और परशुराम अब अस्ताचल का सूर्य है, वो डूबने वाला सूर्य है। परशुराम जी आए हैं। परशुराम जी अब जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व है मानस का कि जो ऋषि होते हुए भी उसको शास्त्र पर इतना वो नहीं जितना शस्त्र पर रहा। परशुराम जी की विचारधारा रही कि संसार को सुधारने के लिए दंड ही देना चाहिए, केवल शास्त्र से जगत सुधर नहीं सकता, ये परशुराम जी का दर्शन था। इसलिए उसके काल में जब राजे महाराजे कम शस्त्र रखते थे, वहां परशुराम जी ऋषि होते हुए भी बहुत शस्त्र रखते थे। विष्णु का धनुष रखते थे, परशु रखते थे, कटिभाग पर दो तरकस बांधे रखते थे। दो व्यक्ति ऐसी हैं इस काल की, ये काल की, जनक क्षत्रिय हैं, लेकिन उसको ज्यादा शास्त्र पर विश्वास है, शस्त्र पर नहीं। होना चाहिए था शस्त्र पर, है शास्त्र। परशुराम ऋषि हैं, मुनि हैं, शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए, ज्यादा शस्त्र पर। तो क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल घातक, भृगुकुल कमल पतंग का प्रवेश हो रहा है, आवाज सुनकर आए हैं। सब क्षत्रिय उससे कांपते थे।
तेरी अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा।
परशुराम जी का आगमन हुआ, गौर वर्ण है, भाल में त्रिपुंड लगाया, कटी पर दो तरकस बांधे हैं। आंख कोई देखेगा तो पता लगेगा कि अभी मौत आई है, इतनी तो विकट भ्रकुटी है उसकी। परशुराम जी आए हैं, ये बात सुनते ही सब राजे महाराजे इतर भीतर होने लगे। जो शस्त्र खींचकर हमला करने की तैयारी में थे, वो शस्त्र फेंक कर शिस्तबद्ध हो गए, नाम ही पर्याप्त था शिस्त लाने में। सब राजे महाराजे परशुराम जी को प्रणाम करने लगे, अपने पिता और दादा का नाम दे दे करके, बाबा क्षमा करना, आप हमारे घर चातुर्मास करने आए थे, हम आपकी बहुत सेवा करते थे, याद कीजिएगा, मैं फला का बेटा, फला मेरा दादा, ऐसा परिचय निकाले और परशुराम जी के चरणों में सब दंडवत करने लगे। पितु समेत कभी कभी निज नाम करने लगे सब दंड प्रणाम, पितु का नाम ले लेकर सब दंडवत करने लगे। परशुराम जी जिसके सामने सहज भाव से देखते थे उसको लगता था कि मानो मेरी मौत आई। बीच में गए, काफी भीड़ थी। जनक महाराज आए, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, जानकी को प्रणाम किया करवाया, आशीर्वाद मिला। विश्वामित्र और परशुराम जी मिले। राम लखन को कहा कि बेटे ये परशुराम जी प्रणाम कर। दोनों भाइयों ने जब परशुराम जी को प्रणाम किया तब भगवान को देखकर परशुराम जी की निगाहें रुक गई। कुछ समय के लिए वो देखते रहे लेकिन स्वभाव कुछ ऐसा था कि निगाहें हटा ली। गोस्वामी जी का मंतव्य रहा कि भगवान को देखने के बाद यदि परशुराम जी ने सीता जी की तरह आंखें बंद कर ली होती तो उसको तुरंत पता लग जाता कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है, लेकिन वो बहिर्मुख रहे, निगाह घुमा ले। और गर्जना करते हुए जनक जी को पूछा कि जनक बता इतनी भीड़ क्यों, ये लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? तुम्हें पता नहीं कि परशुराम जी को बिना पूछे इस राष्ट्र में क्षत्रिय का सम्मेलन असंभव है? मैं क्षत्रिय का काल हूं, पता नहीं क्यों इतने लोग जमा हुए हैं। परशुराम जी ने जब पूछा तब जनक जी ने जिस कारण लोग आए थे वो सब घटना बता दी। धनुष्य भंग की बात जब सुनी तब परशुराम जी को बहुत रोष आ गया। जमीन पर धरती पर धनुष्य के दो टुकड़े देखकर परशुराम जी आवेश में आकर जनक को कहने लगे, हे जड़ जनक, इसे धनुष तोड़ा किसने? ये धनुष जिसने तोड़ा है उसको इस समाज से विलग कर दो ताकि उसकी हत्या कर दो। यदि तोड़ने वाले को समाज से विलग नहीं कर दिया गया तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। जब परशुराम जी ये बात कहने लगे तब सभी राजा बहुत दुखी होने लगे कि ये निर्णय अच्छा नहीं है, एक के बदले में सबको मारना ये कहाँ का न्याय। बाद में तो सब राजाओं को पछतावा हुआ कि इससे तो अच्छा था कि जब जनक ने जाहिर में कहा था कि आशा छोड़कर घर चले जाइए, तब यदि निकल गए होते तो पहुंच गए होते। अब यहाँ से जाना मुश्किल है, महात्मा छोड़ेगा नहीं। सब कांपने लगे। परशुराम जी बार बार पूछने लगे, तोड़ा किसने? अब सोचिए जनक कैसे बताए कि राम ने तोड़ा, क्योंकि अपनी बेटी के भाग्य का सवाल रहा। तो जनक जी बड़ी मुश्किल में, भगवान समझ गए कि जनकराज मुश्किल में और महात्मा जी इतने आक्रोश में, तो जनक जी रामभद्र स्वयं परशुराम जी के सामने बात व्यक्त करते हैं। सबसे पहले भगवान शील का प्रयोग, पहले रूप का प्रयोग तो कर डाला लेकिन परशुराम जी ने आंखें घुमा ली इसलिए ज़्यादा वो रूप को समझ नहीं पाए। अब भगवान अपनी भाषा से, विवेक से शील का प्रयोग परशुराम के ऊपर कर रहे हैं। तो भगवान बहुत सुंदर शब्द बोले, महाराज नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, भगवान का शील देखिए, इतना असाधारण कार्य प्रभु ने किया फिर भी अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परशुराम जी को नाथ के रूप में उसने कबूल किया कि हे नाथ, ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही भक्त होगा, और की ताकत है क्या धनुष तोड़ पाए? परशुराम जी ने कहा कि सेवक का ये कार्य नहीं, सेवक जो होता है वो सेवकाई करे, ये तो दुश्मनी का काम है, ये तो अरिकर्णी की है। राम सुन लो, जिन्होंने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु से भी बड़ा खतरनाक मेरा दुश्मन है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सेवक का ये काम नहीं, ये दुश्मनी का काम है। और जब राम जी को डांटने लगे परशुराम जी, तब लखन जी से नहीं रहा गया। लखन जी तो दंड है ने, भगवान की कीर्ति की ध्वजा को कुछ हो वो दंड नहीं सह सकता। तो एकदम लखन जी को अच्छा नहीं लगा कि मेरे भगवान को ये डांट रहे हैं, सीधे साधे सरल शब्द भगवान कह रहे हैं और महात्मा इतना क्रोध कर रहे हैं। तो एकदम लखन जी विश्वामित्र जी के पास खड़े मानो पूछ लिया कि बाबा आपने ये मुलाकात ठीक नहीं करवाई, क्योंकि राम जी इतने सरल और ये महात्मा इतने आक्रामक, यहां तो आपको चाहिए मुझे रख दे। विश्वामित्र जी को भी लगा कि यहाँ लखन की जरूरत है, तो कहा कि ठीक है जाओ। और लखन आ गए, भगवान समझ गए कि बाबा ने भेजा होगा तो ही आया होगा, तो प्रभु ने भी जगह दे दी। और लखन आते ही ऐसा वाक्य बोले कि मानो यज्ञ कुंड में घी की आहुति डाली गई। प्रथम वाक्य ही ऐसा लखन जी का रहा। बोले महाराज सुनिए, बिल्कुल निर्भीकता से बोले हैं लखन कि महाराज
बाहु धनुगी तोरे लड़काई कब गुण असी रिसकीनी गोसाई, कब गुण असी रिसकीनी धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगु कुल के तु सुनी
लखन जी ने कहा बाबा खाम खा गुस्सा कर रहे हैं आप, हमने बचपन में ऐसे कई तोड़ डाले, ये कोई प्रथम प्रसंग नहीं है। एक टूटा इतने में परशुराम जी को इतना रोष। लखन जी ने कहा बचपन में हम कई तोड़ डाले, और धनु शब्द बहु धनु ही कई तोड़ डाले हमने, कभी गुस्सा नहीं किया, और इस धनुष पर आपको इतनी बड़ी ममता। और बोले ही ऐसा कि बचपन में तोड़ डाले, तो क्या लखन की अभी उम्र कोई बड़ी प्रौढ़ हो चुकी थी, किसी को भी गुस्सा आ जाए ऐसा बोले कि इतनी बार हमने तोड़ डाला, कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया, आप तो त्यागी महापुरुष हैं, आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों। और गौर फरमाना कि कोई त्यागी को ये कहना कि तुम्हें ये चीज पर अभी तक ममता है, वो त्याग का सबसे बड़ा अपमान है। ममता त्याग में और भजन में अंतिम खतरा है। ज्यादातर हम मानते हैं कि ममता नहीं है प्रेम है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कहीं ममता से जीव बंधा हुआ है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है ममता अंत में जलती है भगवत कृपा से, और जब जल जाए तब घटना घटती है। ज्ञान मार्ग हमारे गुजराती में लिखा है, भक्तों ने संतों ने कवियों ने रो रो कर गाया है, जिसको साधना करनी है वो ममता पर बहुत गौर कर।
मारी ममता मरे नहीं एनु मार सुकर, मारी ममता मरे नहीं एनु मार सुकर,
ममता मरती नहीं बहुत कठिन है।
मारी ममता Thank you.
भक्ति, ममता और प्रीति दोनों के बहिर रूप कभी कभी एक जैसा लगता है। आसक्ति में भी बहिर रूप ऐसा लगता है, ममता में भी लगता है और प्रीति में। लेकिन ध्यान देना, ज्यादातर प्रीति कम हुआ करती है, ममता ही होती है, आसक्ति ही होती है। आसक्ति का अर्थ है जो परिणाम में दुख दे, प्रारंभ में सुख दे, और प्रीति का अर्थ है जो प्रारंभ में शायद दुख दे लेकिन अनंत काल तक सुख से भर दे बाद में। ममता बीच वाली स्थिति है जहां साधक बंधन में गिर जाता है। ज्यादातर लोग ख्याल करना, सत्संग में भी कोई ऐसी घटना आए और लोग रो लेते हैं तो सत्संग की असर तो जरूर है, लेकिन अपने अपने जीवन को सोचिए, अपने जीवन में घटी घटनाएं याद आती हैं और ममता रुला देती है। रामकथा में अवधेश का अवसान हो जाए और कथा में हमको रोना आ जाए तो समझना, बहुत गौर करना। मैं ये नहीं कहता कि सब इस वजह रोते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने प्रसंग याद आ जाते हैं। ममता थी किसी के साथ, वो छोड़कर चले गए, उसकी याद सत्संग के माध्यम से रुला जाती। प्रीत वो है संसार की हर घटना भूली और केवल प्रभु के लिए ही रोना, केवल परमात्मा के लिए ही रोना आ रहा। तब समझना प्रीत है जब अकारण रोना आए। सब ठीक से गंभीरता से सोचिएगा, हमारे आंसू के पीछे कोई न कोई ममता काम कर रही, बिल्कुल अकारण आंसू, प्रभु के लिए आंसू, वो प्रीत है। तो आपको ममता इतनी, और सोचिए तो ममता के लिए अब करें क्या? पुत्र की ममता, बेटियों की ममता, पत्नी की ममता, माँ की ममता, क्या करें? कितनी ही व्याख्या करें लेकिन छूटना कैसे? और बंधन लोहे का हो या सोने का, क्या फर्क? बंधन बंधन ही है, क्या फर्क है? कोई कहे कि तुम बड़े लोग हो, तुम्हें लोहे की जंजीर नहीं डाली जाए, आपको सोने की जंजीर में बांध दे, अंतर क्या? बंधन बंधन ही तो है। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि कोई उपाय है आपके पास कि इस ममता के साथ क्या व्यवहार करें? तो बाबा जी ने बताया, एक है, बोले क्या, तोड़ना कठिन है, एक काम करो तो हो सकता।
सब कर ममता था गबटोई, सब कर ममता था कर ममता ताग बटोरी,
पिता की ममता, माँ की ममता, बहन की ममता, संतानों की ममता, इसको तोड़ना कठिन है कम से कम, लेकिन इन सब ममता के धागे को साथ में मिलाकर उसकी रस्सी बना दो और वो डोरी परमात्मा के चरणों में बांध दो और इन ममता की डोरी से प्रभु को खींचो तो ममता समता हो जाएगी, ममता प्रीत में पलटेगी। तोड़ना संसारियों के लिए कठिन है, प्रभु के चरणों में। मीरा के जीवन में ऐसे ही मान्यता रही कि मीरा के जीवन में कुटुंबियों की एक एक की मौत होने लगी, तब उसकी ममता की डोर वो कृष्ण के चरणों में बांधने लगी। सबसे पहले मीरा के माता पिता मर चुके थे, आपने इतिहास सुना होगा, जहां से बहुत प्यार मिला था मीरा ने। प्यार क्या, अपनी माँ से तो इतनी बड़ी दीक्षा मिली थी कृष्ण प्रेम की, भले अनजाने में ही कहा हो। तो माँ मर गई, पिता मर गए, तो वो ममता की डोर उसने कृष्ण के चरण में रख दी। सास ससुर मर गए, उसकी डोर लगा दी। पति मर गया, मीरा ने बहुत दुख दिया, वो उसका पति नहीं था, पति तो बहुत अच्छा था मीरा का। राणा ने विष दिया, राणा यानी उसका पति नहीं, जिन लोगों ने विष दिया था वो तो उसका देवर था, उसका पति तो बड़ा सज्जन आदमी था, लेकिन कम उम्र में मर गया था। बहुत बहुत अच्छा आदमी रहा मीरा, लेकिन उसके बाद उसका देवर जो गादी पर आया, उसकी आंख में वासना थी और मीरा खूबसूरत थी, उसको पाना चाहता था। और मीरा कृष्ण भक्ति में इतनी डूबी थी कि वो उसको मार देना चाहता था। तो विष जिन्होंने भेजा वो राणा, राणा तो शायद उसकी सरनेम रही, उसकी ज्ञाती के वो रहा, अटक रही, ऐसा महात्माओं से हमने सुना है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना कि ममता के सब डोर प्रभु के चरणों में बांधते, संसारियों के लिए यही ठीक है, तोड़ना कठिन है। तो महात्मा जी आप तो इस धनुष पर इतनी बड़ी ममता, परशुराम जी एकदम गुस्से में आ गए, अरे नप बालक, पूरे प्रसंग में परशुराम जी लक्ष्मण जी का नाम नहीं लेते, हे राजा के बालक, तुम बोलने में संभाल नहीं रहे हो, तुम कहते हो कि हमने कई बचपन में तोड़ डाले धनु, धनु ही समत त्रिपुरारी धनु, सब धनुष को भगवान शंकर के धनुष के साथ तुम जोड़ रहा है, ये तो भगवान त्रिपुरारी का कोदंड है, भगवान शिव जी का धनुष, इतना महान धनुष और तुम सबके साथ उसको जोड़े जा रहे हो। लखन जी ने कहा महाराज आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बेकार गुस्सा, ये तोड़ा नहीं गया तो हम आए, धनुष गिरा था, पड़ा था, हमको लगा क्षत्रिय है कि देखे शस्त्र कैसा है, तो भगवान राम देखने गए, ये नया है या पुराना, देखने गए और छूते ही टूट गया, इसमें हमारा क्या दोष, शायद टूटने का योग रहा होगा। शिव के धनुष को छुए और टूट जाए ऐसा कहना मौत की मांग थी। परशुराम जी बहुत गुस्से में आ गए कि बालक तुम बोलने में बिल्कुल अविवेकी हो, ये भगवान शंकर का धनुष कितना बड़ा धनुष है। लखन जी ने कहा तो महाराज आपके मुंह से न्याय हो गया। बोले क्या, कि धनुष यदि इतना बड़ा है अपनी मान्यता में तो सोच लीजिए तोड़ने वाला कितना बड़ा होगा, धनुष यदि इतना बड़ा है तो आप अपने ढंग से विचार कर लीजिए। एक धक्का लगा परशुराम जी को, सभा को कहने लगे कि मैं इस बालक की हत्या कर दूंगा, मेरे सामने मेरे जीवन में ये प्रथम प्रसंग है कि कोई बालक ऐसे निर्भीकता से बात करे, मैं क्षत्रियों का काल हूं। बार बार परशु लेकर लखन जी को मारने दौड़े। लखन जी ने कहा महाराज आपको आगे उपदेश देना ठीक नहीं, लेकिन एक सूचना एक प्रार्थना करो। बोले क्या, कि आप इतने हथियार क्यों रखते हैं, ये परशु ये विष्णु का धनुष ये दो दो तरकस ये सब क्या भजन आप ढाए जा रहे क्यों ना रखो। बोले आपके वचन ही कोटि वज्र का काम कर रहे हैं, आपकी वाणी ही इतनी धारदार है कि आपको शस्त्र की जरूरत नहीं, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा वृथा धरहु धन बाण उठारा, आप क्यों शस्त्र लिए जा रहे हैं। और बात बिल्कुल सही है, हम संसार में देखते हैं कि कई लोगों की भाषा ही ऐसी होती है कि शस्त्र की जरूरत नहीं रहती, ऐसा विकृत बोलेंगे कई लोग। मैंने पहले भी आपको सूत्र के रूप में कहा कि सत्य बोलना, लेकिन सत्य भी अप्रिय मत बोलना, किसी के दिल को आघात हो ऐसा कभी मत बोलो, क्या अधिकार है ऐसा बोलने का, वाणी इसलिए नहीं दी गई है या मौन रहो, वाणी से बहुत बिगड़ जाता है काम। परशुराम जी को लखन ने कहा आपकी वाणी ही शस्त्र का काम कर रही। पुनः परशुराम जी क्रोध में आ गए, दो तीन बार परशु उठाकर मारने दौड़े हैं तो मार नहीं सके। लखन जी ने कहा महाराज आप बार बार परशु दिखाते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि हम आपसे घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे। महाराज हमारे कुल का एक रिवाज है क्या, कि जिसके भाल में तिलक हो और कंठ में यज्ञोपवीत हो उसके सामने हमसे युद्ध नहीं होता। आप हमको कायर मत समझे, आप त्रिपुंड को निकाल दीजिए और गले में जो यज्ञोपवीत है उसको तोड़ डालिए, बाद में पता लगे कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। जब परशुराम जी को ललकारा गया तब परशुराम ये बात सह नहीं पाए, राम जी को दूर खड़े खड़े बहुत खुशी हुई कि लखन ठीक कर रहा है, लेकिन भगवान को लगा कि अब बात बढ़ जाएगी तो भगवान बीच में आ गए, लखन को इशारा कर दिया और भात जोड़ कर परशुराम जी को कहा कि बाबा ये मेरा छोटा भाई है, बालक है, उसके दांत में दूध है, वो क्या जाने आप कौन हो, आप केवल महात्मा के रूप में आते तो वो आपकी चरण धूली सर पर लगाता, लेकिन आप शस्त्र लेकर आए ना तो उसको लगा कि शायद कोई बड़ा शूरवीर है, तो क्षत्रिय के स्वभाव के अनुकूल वो दो शब्द बोल गया, मैं उसके बदले में माफी चाहता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है उसके मुँह में दूध है। परशुराम ने कहा नहीं उसके मुंह में दूध नहीं विष भरा है,
मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसी भाषा सुनी है। तू इतना सीधा सादा और सरल, और ये तेरा छोटा भाई इतना टेढ़ा क्यों? और ऐसे वक्र आदमी को साथ में रखने से तेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। तेरे स्वभाव के ये जरा भी अनुकूल नहीं है तेरा भाई। तुम इतना सरल और ये इतना टेढ़ा, तेरे स्वभाव प्रकृति से जरा भी मिलावट नहीं उसकी। लखन जी ने जब ये बात सुनी तो विश्वामित्र जी को कहा कि बाबा जवाब देने का अवसर है, जाओ। बोले जाओ। और लखन जी आ गए पुनः बीच में और कहा कि महाराज आपने ठीक कहा, मैं भगवान को अनुकूल नहीं, मैं आपको ही अनुकूल हूं महाराज, क्योंकि तुम्हारी और मेरी प्रकृति मिलती जुलती है। भगवान सरल, आप हमारी दोनों की जमती है महाराज। लखन जी पुनः एक बार आहुति डाल दी और परशुराम जी बहुत रोष में, नगरवासी लोग कान पर हाथ देकर कहने लगे कि ये बालक तो बचाया जाए, इतना बोल रहे वो ठीक नहीं। और परशुराम धरती पर अपने परशु को घिस करके मारने दौड़े कि अब मुझे बाल हत्या का भले ही पाप लगे, मैं इस बालक की हत्या कर दूंगा। और मारने दौड़े, दो तीन बार हाथ उठाए, मार नहीं पाए। तो परशुराम जी स्वगत बोलने लगे कि आज मेरा शस्त्र क्यों नहीं चलता, मेरा हाथ उठता क्यों नहीं, यानी प्रहार क्यों नहीं करता। लखन जी खड़े। लखन जी ने कहा महाराज इसका जवाब हम दें। बोले क्या? कि आपका हाथ और शस्त्र नहीं चलता, इसका प्रत्युत्तर यह है कि आपके हाथ यानी अंग शस्त्र ये सब हमको जान गए, लेकिन अभी तक आप हमको जान नहीं पाए। आपके हाथ पहचान गए कि ये कौन है, आपके शस्त्र पहचान गए कि उसके सामने हमला करना ठीक नहीं, लेकिन अंग पहचान गए, लेकिन अंगी पहचान नहीं पाया। महाराज अखंड को देखने के बाद खंडित को देखकर क्यों गुस्सा करे जा रहे हो? परमात्मा अखंड है और ये धनुष तो खंडित है। नाशवंत को देख, शाश्वत को पाने के बाद नाशवंत के प्रति इतनी ममता क्यों? लखन जी बड़े मार्मिक शब्द बोले जा रहे हैं। भगवान बहुत खुश हैं। यहाँ परशुराम जी का तेजोवध होने लगा तो उसने फैसला कर लिया मानो कि बस अब मैं बालक को मार ही दूंगा। बार बार दौड़ते हैं मारने के लिए, भगवान को लगा कि अब शायद बात बिगड़ जाएगी, तो भगवान पुनः बीच में आ गए, लखन जी को हटा दिया गया। कहा कि महाराज क्षमा करें, लखन जी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं आपका अपराधी हूँ, आपके हाथ में परशु है, मेरा सर झुका हुआ है, आप दंड करें, काट ले, सजा करें, जो कुछ करना सो करो, लेकिन अपराधी मैं हूँ, लखन ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, और आपका क्रोध जैसे कम हो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। परशुराम जी ने कहा कि क्रोध कम कैसे हो, अभी भी तेरा भाई देखो मेरे सामने कैसे देख रहा है। लखन जी दूर खड़े खड़े कुछ ऐसे देख रहे थे, परशुराम जी उसको भूल नहीं सकते। लखन ने देखा कि बाबा मुझे याद कर रहे हैं, तो विश्वामित्र जी को कहा कि बाबा तीसरी बार हुआ हूं, बोले जाओ। और लखन तीसरी बार आ गए, भगवान समझ गए, और लखन ने कहा कि महाराज एक बात बताऊं। बोले क्या? क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप का मूल है, जिसके अधीन हुआ आदमी अनुचित कार्य कर देता है। आप महापुरुष हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको अंतर्मुख रहना चाहिए। परशुराम जी को कोई उपदेश दे, ये कैसे हो सकता? परशुराम जी ने कहा कि बस अब मैं उसको, उसकी हत्या ही होने वाली, या तो इस बालक को मेरे सामने से हटा दिया जाए। लखन जी ने कहा मुझे हटाने के बदले आप ऐसा करें, आंखें बंद कर लें, क्योंकि मुझे यदि आप हटा दोगे तो भी मैं आपके मानस से तो जाऊंगा नहीं, आंख बंद कर लीजिए। लखन का इशारा था महाराज आंख बंद करके चिंतन करो कि पूर्णावतार हो चुका है, अब क्यों हथियार उठाए जा रहे हो। भगवान राम जी पुनः आते हैं और गर्भित शब्द कहते हैं कि महाराज आप बार बार निमंत्रण देते हैं कि युद्ध करो युद्ध करो, लेकिन आपके साथ हमारा युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है, हम तो आपके चरण हैं, आप हमारे मस्तक हैं, मस्तक और चरण में कभी तकरार नहीं हो सकती, आपको जो कुछ करना सो कीजिए, बाकी एक बात हम आपको बता दें कि हम रघुवंशी हैं, काल हमारे सामने आकर ललकार करे तो हम काल के सामने युद्ध करते हैं, लेकिन आप संत हैं इसलिए आपके सामने हमसे कुछ नहीं होगा। और संत लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने बोलते बोलते अपने कंधे पर से एक वस्त्र हटाया और सीना दिखाया जहां भृगु लांछन लगा हुआ था। आपके कुल के वडीलों ने हमारे सीने में चरण प्रहार किया तो हमने चरण स्वीकार कर लिया, महाराज हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। ये बात जब कही और सीना बताया तो कहते हैं परशुराम जी की बुद्धि के द्वार खुल गए, परशुराम जी के नेत्र भर गए और परशुराम महाराज पा गए कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है। आंख में अश्रु आ गए, शस्त्र गिरने लगे, कंधे से विष्णु का धनुष निकाल कर कहा, राघव ये धनुष चढ़ा दो तो मुझे पता लग जाए कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है। जनकराज राम को तभी ब्रह्म मानते हैं जब धनुष टूट जाए, और परशुराम राम को तभी ब्रह्म मानता है जब धनुष चढ़ा दिया जाए। कंधे से धनुष निकाल कर ऐसे रखा तो देत बस देते ही अपने आप धनुष चढ़ गया। परशुराम जी के मन को विस्मय हुआ कि अवतार हो चुका है, बस पूरा यकीन हो गया और मानस में लिखा है, मुख से स्तुति फूट पड़ी। परशुराम जी गाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। तुलसी जी लिखते हैं,
जय रघुवंश बनज बन भानु दहन तनु जय कुल दहन कृषानु, जय रघुवंश बनज बन भानु दहन तनु जय कुल दहन कृषानु, जय रघुवंश बनज बन भानु दहन तनु जय कुल दहन कृषानु, जय
रघुवंश के कमल को खिलाने वाले विकसित करने वाले सूर्य तुम्हारी जय हो, असुरों का नाश करने वाले भगवान आपकी जय हो, गौ ब्राह्मण के प्रतिपाल आपकी जय हो, वाणी में बड़े पंडित आपकी जय हो। मेरी भूल हो गई कि मैंने आपको न कहने के शब्द कह दिए, मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं आपके महिमा से अनभिज्ञ था।
अनुचित कहूं बहुत अज्ञाता समहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत अनुचित बहुत कहो अज्ञाता समहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित कही जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनहि तपहि तू, जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनन तप हे तू,
मुझे क्षमा कर देना दोनों भाइयों को कह रहे हैं। बार बार जय जयकार करके परशुराम जी अपने अवतार कार्य को समाप्त करके वन में चले गए। ये घटना गोस्वामी जी ने यहाँ लिखी है, बाकी वाल्मीकि जी ने उसका विलग अभिप्राय दिया है। वाल्मीकि जी ने वैसे आप जानते हैं एक और रामायण लिखी जिसका नाम है आनंद रामायण। वाल्मीकि का जो मूल ग्रंथ है उसमें सब प्रसंग बहुत विषादपूर्ण हो गए हैं, इसलिए एक बार एक कथा ऐसी लिखी जिसमें सब प्रसंग आनंद के लिखे गए जिसका नाम आनंद रामायण। आनंद रामायण का अभिप्राय है परशुराम यहाँ नहीं आए, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, दशरथ जी बारात लेकर आए, राम जी की शादी हो गई और जनकपुर से जब दशरथ जी अयोध्या जा रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं और वशिष्ठ जी ने अवधपति को कहा कि सब कार्य संपन्न हुआ अवधेश, लेकिन मुझे लगता है अब एक विघ्न आने वाला है। बोले कौन? परशुराम जी आ रहे हैं। और परशुराम जी ने बारात को रोक कर बहुत विवाद किया है, राम के सामने आकर कहा कि तुमने धनुष तोड़ा और ब्याह कर जा रहे हो, लेकिन मेरे सामने संग्राम करो तभी मानो तुम शूरवीर हो। गोस्वामी जी बाद में ये प्रसंग नहीं लिखते। प्रथम किसी पाठक ने गोस्वामी जी को पूछा कि आपने वाल्मीकि जी से मतभेद कर लिया? बोले नहीं नहीं, समझौता कर लिया। बोले क्या? कि वाल्मीकि जी भले ही बाद में लिखे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने विघ्न आने हो वो पहले आ जाए, शादी के बाद कोई विघ्न ना आना चाहिए, मेरे माता पिता जब ब्याह कर जाए तब बीच में कोई विघ्न ना आए, इसलिए परशुराम जी को बला प्रथम बुला लाते। यहां मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस प्रसंग में प्रवेश कर रहा हूं। वाल्मीकि जी के मतानुसार तो परशुराम जी ने राम जी को कहा जब बारात जा रही थी तब कि यदि तुम ब्रह्म हो तो ये विष्णु का धनुष चढ़ा दो। भगवान ने तीन बार मना की कि बाबा मुझे मानना हो तो मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, लेकिन ये धनुष चढ़ाने की बात आप बंद रखे। बोले नहीं, चढ़ा दो तो ही मैं मानू। कहा नहीं माने तो भगवान ने धनुष चढ़ा दिया, उस पर तीर लगा दिया। परशुराम जी को यकीन हो गया कि ये ब्रह्म है, धनुष चढ़ते ही। अब भगवान ने कहा कि हम रघुवंशी का रिवाज है, नियम है कि धनुष पर तीर चढ़ जाता है पर बाद में नीचे उतरता नहीं, अब जगह बताइए तीर कहां डालो और समझ करके जगह बताना जहां ये तीर जाएगा सख्त भस्म कर दे, बताइए। और उस वक्त परशुराम जी जो जगह बताते हैं बड़ी अच्छी जगह बताते हैं, हाथ जोड़े, प्रभु मैंने 21 बार क्षत्रियों को मारा, ज्यादातर मैंने दोषी लोगों को ही मारा है, लेकिन कभी कभी सामूहिक हत्या में मुझसे शायद निर्दोषी भी मर गए हैं, और निर्दोषी की हत्या का मुझे जो पाप लगा हो वो पाप का ढेर जहां हो वहां ये तीर छोड़ दीजिए ताकि मेरे पाप बल जलकर भस्म हो जाए और मैं मुक्त हूं। परमात्मा ने तुरंत तीर चला लिया और परशुराम जी के एक पाप पुंज को मानो भगवान जला रहे हैं। कितनी बड़ी प्यारी बुद्धि रही परशुराम जी की। परशुराम महाराज मानस के मतानुसार जय जयकार करके चले गए तप हेतु वन में और सब विघ्न दूर हो गए। यहाँ जनक महाराज विश्वामित्र के चरणों में वंदन करके कहने लगे, महाराज आपकी कृपा से सब विघ्न हट गए और ये दो भाइयों के लिए मैं क्या कहूँ, मोहि कृतकृत्य किन्ह दो भाई, ये दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। कृतकृत्य शब्द हम कहीं भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन कृतकृत्य का अर्थ होता है अब हमारे जीवन में कुछ करना बचा नहीं, हो गया बस। तो जनक जी ने कहा हम कृतकृत्य हो गए और तुरंत जनक ने पूछा अब हमें क्या करना चाहिए बताइए, बड़ा विरोधाभासी निवेदन है। एक और जब कृतकृत्य भाव आ गया बाद में करने का कुछ शेष रहा नहीं और तुरंत पूछते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, विश्वामित्र जनक के प्रश्न को बलिभात समझ गए हंसे कि जनक जी आपके लिए कुछ करना बचा नहीं, लेकिन अब तुम मंडप की रचना करवाओ, पत्र लेकर दूतों को अवध भेजो और बारात लेकर दशरथ जी आए और सीताराम की वेद विधि से विवाह विधि की जाए और बाद में अपनी बेटी को आप विदाई दें। आपको कुछ करना नहीं, आप तो ब्रह्म को पा गए, लेकिन आपकी बेटी की शादी की ऐसी रीत बनाई जाए कि इस रीत की पद्धति से संसार के जीव भी ब्रह्म को पा जाए। तो अब विवाह की कथा आती है, वो सीताराम जी का विवाह किया वो तो अखंड अभिन्न तत्व है। विश्वामित्र जी ने तो यही कहा है कि विवाह की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि धनुष टूटा और विवाह हो चुका। लखन जी बीच में बोले कि महाराज वो तो आपका मंतव्य है, लेकिन मुझे पूछिए, धनुष टूटने से विवाह नहीं, विवाह तो बाद में ही हो चुका था महाराज जब पुष्पवाटिका में मुलाकात हुई। फिर भी आप वंश व्यवहार के अनुकूल करें, बात स्वीकार की गई। और यहाँ महाराज जनक जी ने वितान कुशल लोगों को बुलाया, बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया जनकपुरी में, और दूतों को पत्र लेकर अवध भेजा गया, पूरी नगरी संवारी जा रही है जानकी की शादी के लिए। जनक के दूत अयोध्या आते हैं। महाराज दशरथ जी की स्थिति मणि के बिना फनी की तरह रही, और पहली बार राम का संदेश आया है। महाराज को जब पत्र दिया गया और कहा कि आपके बेटे का संदेश, बस पत्र और संदेश की बात सुनते ही आंख में अश्रू आ गए। बाबा जी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर, आंख में चिट्ठी रह गई, पढ़ नहीं पाए, और राम लखन की याद इतनी उमड़ आई, आंख में अश्रू आ गए।
राम लखन उड़ कर बरती थी, कहतन रह गई खाटी थी।
ए, अच्छे समाचार की पत्रिका है, कोई अमंगल खबर है, वो निर्णय नहीं कर पाए महाराज। पूछने लगे आजकल मेरे संतान कहाँ है, सब बात दूतों ने बताई, और अहल्या ताड़कावध से लेकर परशुराम जी की विदाई तक की सभी घटना उसमें लिखित थी। दशरथ जी ने पढ़ी और बहुत आनंदित हुए। यहाँ भरत और शत्रुघ्न खेल रहे हैं, दौड़ते आए, पिताजी कहाँ से पत्र आया, कहा बड़े भैया का पत्र है। भरत जी पत्र लेकर आँख में अश्रू आ गए, सबको समाचार मिल गया, वशिष्ठ आदि सब आए हैं, और जनक के दूतों ने सब बात बताई। सब अयोध्या के लोग जनक के दूतों को भेंट देने लगे, वो लोग मना करें, इससे पूर्व तो बड़ा ढेर हो गया भेंट सौगात का। जनक के दूतों ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये वापस ले लीजिए, हमसे नहीं लिया जाए। बोली ये भेंट है, भीख नहीं है। कहे महाराजा क्षमा करें, आपके सामने हम चर्चा करें वो मर्यादा का भंग है, लेकिन हम भेंट भी नहीं ले सकते। बोले क्यों? क्योंकि हम कन्या पक्ष के हैं, हमको यहाँ बेटी देनी है, हमको तो जितना दिया जाए हमसे इतना देना चाहिए, यहाँ से कुछ लेना ठीक बिल्कुल सही, बेटी वाला परिवार सदैव देता है। आपने कथा सुनी होगी, आज भी मिथिला में कई महात्मा ऐसे चुस्त है, मैंने सुना कि आज भी वो लोग अयोध्या जाएंगे ना तो कमंडल में पानी बाहर से भरते जाएंगे, अयोध्या का जल नहीं पिए। महात्माओं को पूछा जाए कि आप अयोध्या का जल नहीं पीते, बोले नहीं, यहाँ हमारी बेटी वैदेही ब्याही है, हम बेटी के गांव का पानी नहीं पीते। इतना लोग कन्या पक्ष का धर्म को निभाते। कथा आती है कि जब जानकी जी को विदाई दी जनक जी ने, तब कहीं हाथी भेजे थे दाईजे ने, और हाथी में थोड़ी बुद्धि होती है, तो ये हाथी जब जनकपुर से आए अयोध्या तो अयोध्या का खुराक नहीं खाते थे, एक मास तक हाथियों ने खाया नहीं। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को पूछा कि ये हाथी खाते नहीं क्या करे, बोले उसको लगता है कि हम कन्या पक्ष के, यहाँ का हम कैसे खाए। तो जनक राजा को समाचार दिया गया, और जनक ने वहाँ से व्यवस्था की कि अवधपति चिंता न करे, हाथी जीते रहेंगे तब तक उसका खुराक मिथिला से भेजा जाएगा। तभी हाथी ने खाया, बेटी वाले ले नहीं सकते। दूतों को निवास दिया, पत्र लेकर राजभवन में आए, रानियों ने पत्र एक दूसरे के हाथ से लेकर सीने से लगाकर राम मिलन का अनुभव किया। वशिष्ठ जी ने नगरी को संवारने की सूचना दी, एक दिन और रात्रि में सब तैयारी हुई, और पूरा नगर बाराती बनकर राम के ब्याह में निकले हैं। कई वाहन सजाए गए, भरत शत्रुघ्न मित्रों के साथ अश्वारूढ़ हुए, महाराज दशरथ जी वशिष्ठ आदि सब रथ में विराजित हुए, बाकी अपनी अपनी कक्षा के अनुसार। कौशल्या अन्य रानियों विदाई दे रही हैं, और महाराज दशरथ जी बारात लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। दुनिया भर के शकुन महाराज के सामने आए, गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आई, महिला पानी का घड़ा सर पर लेकर सामने आई, मृगमाला रास्ते में उतर आई, नकुल के दर्शन होने लगे, ब्राह्मण लोग वेद का पुस्तक लेकर सामने मिले, मछली मिली, दही मिला, बहुत अच्छे शकुन हुए। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई अच्छे काम में हम निकले और रामचरितमानस में लिखा है ऐसा शकुन हो जाए तो समझना बड़ी अच्छी निशा है, लेकिन उसके साथ ये कहना जरूरी कि शकुन आकस्मिक होना चाहिए, उसका आयोजन नहीं होना चाहिए। घर से निकले और अचानक कोई गाय मिल जाए तो शकुन, तुम घर से निकलो और किसी को कहो कि ये गाय खड़ी है उसको लाठी मारकर इधर भेजो तो वो शकुन नहीं है। शकुन अचानक हो तो ही ठीक है, और मैं तो केवल यही कहूंगा कि हमको सुकून मिले न मिले कोई चिंता नहीं, ये मानव तन मिला है वो सबसे बड़ा सुकून है। अब हमको यही फैसला कर लेना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा बनाए कि हमारा किसी को अपसुकन न हो। हमें तो सुकून मिल ही गया क्योंकि मनुष्य बन चुके हैं। परमात्मा की इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव तन, उससे ज्यादा कोई श्रेष्ठ रचना नहीं। अब हमारा किसी को अपसुकन न हो। कई लोग ऐसे होते हैं, लोग सुबह में नाम नहीं लेते, नहीं होता ऐसे? सुबह में कोई ऐसे लोग मिलेंगे तो लोग कहते हैं कहाँ ये मिला सुबह सुबह, आज पूरा दिन बिगड़ेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। जीवन को ऐसा बनाओ कि सुबह में कोई सुमिरन करे तो उसका पूरा दिन प्रसन्नता से भर जाए, इतना करना चाहिए। मनुष्य तन मिला है और इसके लिए हमें अपने जीवन में झांकना चाहिए कि हम अपशुकन सुकन की चर्चा करें, लेकिन जरा सोचिए हम में सुकून पाए ऐसा कैसा अच्छा अच्छी बात है। हम अपने को तो जानते, लोग दूसरों को बहुत देखते हैं, अपने को बहुत कम देखते हैं, यही तो हालत है ना। जब तक तुम अपने स्वभाव को नहीं पहचानोगे तब तक परमात्मा सामने आएगा तो भी उसके प्रभाव से आप अनभिज्ञ हो रहोगे। अपने आप को पहले जानो। उपनिषद का बड़ा सूत्र है को हम, मैं कौन। रामकृष्ण परमहंस के पास एक बड़ा श्रीमंत आया, आपने सुना होगा ये बनी घटना। बैठे थे बाबा जी दूर में बैठे थे, तो कभी कोई संत के पास गया नहीं। सत्संग क्या चीज वो उसको पता नहीं, पैसे कमाने में ही पूरी जीवनी उसने लगाई थी। तो वो अचानक आया और गाड़ी एक और पार्क करके बाबा जी के पास न वंदन किया न कुछ, आकर बैठ गए मानो मित्र के सामने बैठा। और परमहंस जी कुछ बोले उससे पूर्व उसने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आपके साथ काली बातचीत करती है, सच है? परमहंस ने कहा बिल्कुल सच है, तुरंत जवाब दे दिया। वो बड़ा हैरान हो गया कि क्या कह रहे हो, काली का काली मैया आपसे बात करती है? बोले हाँ वो मुझे मिलती है अक्सर, यहाँ आती है मिलने को, कमाल है। तो वो कब आती है? बोले वो निश्चित नहीं, वो तो जगदम्बा है, स्वतंत्र है, कभी भी उसकी इच्छा हो जाए तो आ जाती है, लेकिन सप्ताह में एक बार तो जरूर आती है। तो श्रीमंत शेठ ने कहा कि अच्छा एक काम करना, अब जब काली आपके पास आए ना तो मेरे घर भेजना, मुझे उसका दर्शन करना है। कितनी बेवकूफी है समझ। पैसे वालों के पास यदि सत्संग नहीं है तो बहुत मूर्ता आ जाती है पैसे वाले। सत्संग ही पैसे वालों को सुधार सकते हैं और पैसे वाले संतों की सेवा भी क्या कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई पैसा वाला संत सेवी नहीं है, वो तो संत की कृपा है कि तुम्हारे पास सेवा करवाता है। इस संसार में कोई संत से भी कभी भी भूल मत करना कि हमने गाड़ी लगा दी, हमने पैसे लगा दिए, हमने किसी के लिए ये व्यवस्था कर दी, हमने किसी करना चाहिए, लेकिन ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। सही संत किसी की सेवा इसलिए कबूल कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है कि तुम्हारी संपत्ति सदुपयोग में। यानी संसार में कोई संत से भी नहीं, वो तो संत का अनुग्रह होता है कि सज्जन लोग साधन संपन्न लोग संत सेवा में जुटे। कभी भी भूल मत करना। सत्संग यदि तुम्हारे साधन में नहीं, सत्संग यदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं, सत्संग यदि तुम कोई बड़े पदाधिकारी हो, बड़े क्षेत्र के कोई बड़े व्यक्ति हो, लेकिन सत्संग का रंग नहीं तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संग कर, यही तुम्हें जीवन बताएगा। सब रास्ता बताएगा, ये कंटक ये फूल है, यहां ऐसे चलो, यहां ऐसे चलो, यहां ये करो, सब रास्ता संत बताएगा गृहस्थ। इसलिए सत्संग करो। इसलिए मैं पुनः कहूं, बाबा जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग। कहने का मतलब कभी सत्संग किया नहीं होगा, केवल संपत्ति संपत्ति संपत्ति। और भगवान से ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी शायद, क्योंकि ऐसी सीख किसको अच्छी लगेगी है? लेकिन हम तो जो सही लगता है दिल तक बात पहुंचती है वही हम कहते हैं कि जीवन में यदि सचमुच सुखी होना है तो तीन बात का ख्याल करना। उस पर हम कहें और आप मान ले नहीं, सूत्र आपके पास छोड़ा जाता है, आप अपने अनुभव में लेने के बाद यदि ठीक है तो स्वीकार ना, वरना छोड़ देना। सचमुच सुखी होना हो तो तीन बात का ध्यान रखना। हम कहते हैं ना कि तन मन धन से सेवा करते हैं कोई लोग, कुछ लोग होते हैं तन मन धन से सेवा करते, अच्छी बात है, तन से मन से धन से सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये तीनों के साथ विवेक रखे, सुखी होना हो तो पहली बात जीवन में धन कम रखे, सुखी होना हो तो। ये सूत्र किसको अच्छा लगे, किसको अच्छा लगे? हम आपको कहे कि आपका धन कम हो जाए तो आप दूसरी बार हमको बुलाएंगे? पूर्णावति के दिन हम ऐसे आशीर्वाद दे कि कलकत्ता वालों का धन भगवान करे, हम नहीं बोलेंगे, घबरा रहे हैं, क्योंकि संसारी सह नहीं सकते ना, बाकी तो वो शाप नहीं आशीर्वाद है, लेकिन संसारी नहीं समझ सकेंगे। सुखी होना हो मेरे भाई बहन तो जीवन में धन कम रखें, ज्यादा संग्रह मत करें। पांच रोटी से तुम्हारा पेट भर जाए तो 15 बिगाड़ कर 5 गरीबों की रोटी छीन मत लो। सीधे सादे कपड़े से तुम्हारा बदन यदि तुम ढांक सकते हो तो बहुत सिल्की कपड़े पहनकर कई नंगे पड़े हैं इस राष्ट्र में, कहीं जाड़े में कांप रहे हैं इस राष्ट्र में, उसके लिए कुछ किया जाए। सुखी होना है तो धन कम, जितनी जरूरत हो, हा? हमारा परिवार सबका ठीक से गुजारा हो जाए, बेटे बच्चियों का शादी वगैरह व्यवहार हमारी कक्षा के अनुसार संपन्न हो जाए, बस इतना, ज्यादा नहीं धन का। और आपकी समझ में जब भी आए तब मानना, अर्थ तुम नीति से कमाओ या अनीति से कमाओ, अर्थ का परिणाम सदैव अनर्थ ही होता है। कभी भी जो हमको बहुत दृढ़ हो गई बात ये बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि धन नीति से कमाना चाहिए, अच्छी बात है, अर्थ का उपार्जन नीति से ही होना चाहिए, लेकिन सावधान, चाहे नीति से कमाओ चाहे अनीति से अर्थ पाया जाए, अर्थ का अंतिम परिणाम अनर्थ ही है, अर्थ अनर्थ ही करता है, इससे काम अच्छा है, गलत मत समझे, अर्थ से काम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काम में कम से कम चेतना तो है, अर्थ तो तद्दन जड़, कौन छूता उसको, इसलिए बड़े बड़े त्यागी छूते भी नहीं, जैसे अग्नि को छूने में डर, ऐसे छूते नहीं, कौन छूता उसको, काम में कम से कम चेतना है, इसलिए परमात्मा ने काम को विभूति योग में अपनी विभूति बताई, गीता काम मेरी विभूति है। हमारे रामचरितमानस के परम हंस संत श्री भरत जी त्रिवेणी संगम के सामने जब भिक्षुक बने तब उसने प्रथम प्रहार अर्थ पर किया है, पहला प्रहार उसने त्रिवेणी के सामने कर दिया कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, कौन इस अर्थ को छुएगा जिन्होंने मेरी अवध में इतना बड़ा अनर्थ पैदा कर दिया, हमारी माताओं को विधवा कर दी, जिस अर्थ ने, जिस संपत्ति ने मेरे परमात्मा को दर दर भटका दिया, मेरी माँ वैदेही जिन्होंने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था वो आज नंगे पैर चली जा रही है, इस अर्थ के कारण हुआ, इसलिए भरत जी प्रथम प्रहार अर्थ पर करते हैं। अर्थन धर्मन काम, अर्थन धर्मन काम रुचि नतिन चहौ निर्वाण, अर्थन धर्मन जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन आन, यह वरदानन आन, यह वरदानन आन, यह वरदानन आन, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहौ निर्वाण, तो अर्थ अंत में अनर्थ ही करता है, इसलिए अर्थ कम, धन कम और सुखी होने के लिए दूसरा सूत्र तन तन मध्यम। शरीर ज्यादा पुष्ट हो जाएगा तो भी तुम परेशान हो जाओगे, और कलयुग में शरीर ज्यादा सुखा दोगे तो भी राम कार्य नहीं कर पाओगे। इस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस साधन है शरीर। तो तन मध्यम, बहुत सुख न दो शरीर को, और शरीर को कलयुग में बहुत कष्ट भी न दो। बुद्ध का मध्यम मार्ग, बहुत भोग मत दो इस शरीर को कि अकारण वो ढीला हो जाए, और शरीर को बहुत तोड़ो भी मत। मध्यम तन धन का, तन मध्यम, और तीसरा सूत्र मन महान। मन को इतना बड़ा बनाओ कि भगवान के सामने तुम शिकायत कर सको कि प्रभु तूने दुनिया छोटी बनाई है, मेरा मन कितना बड़ा है। करुणा और प्रेम से मेरा मन उछल रहा है, तेरी दुनिया प्रेम करने, करुणा करने में, सेवा करने में मुझे छोटी लगती है। इतना मन महान बनाओ। आज सब सूत्र पलट चुके हैं, इसलिए पूरा जगत दुखी है। अपने अपने जीवन से पूछते जाइए, मन छोटा हो गया लोगों का, बिल्कुल छोटा मन लोगों का। बात बात में झिझक जाते हैं, बात बात में रोष, बात बात में बुरा लग गया, बात बात में मुख फेर गया, बिल्कुल कंगाल मन, छोटा मन। देखो कोई संतों के मन को, निंदा अस्तुति उभय सम, मन लोगों का बहुत छोटा, दया आती है बहुत छोटा। तन कहीं मध्यम है, बाकी कहीं बहुत पुष्ट, कहीं बहुत कृश, कई लोग सबल, कहीं बहुत निर्मल। और सबसे उल्टा सूत्र तो ये, जो धन कम रखना चाहिए वो धन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। बढ़े भगवान बढ़ाए, मना नहीं है, लेकिन सावधान रहिए। सत्संग नहीं करोगे तो धनवान मूढ़ रहेगा, सत्संग नहीं होगा तो पदाधिकारी मूढ़ रहेगा, सत्संग नहीं होगा तो बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं। तो इस अकलमंद, कितना अकलमंद की परमहंस को कहने लगा कि अब माताजी तुम्हारे पास आए तो मेरे बंगले पर भेजना, बुद्धि की दया आती है ना। लेकिन ये तो परमहंस है, संत है, कहा कि अच्छी बात है शेठ जी, आपका इतना आदर है कि माँ आपके महल पधारे, तो मैं जरूर माँ को आपके घर भेजूंगा, लेकिन कृपया आप जरा आपका पता तो दीजिए कि माँ आए तो मैं कहाँ भेजूं। तो उसने जेब से अपने बंगले का पता का कार्ड निकाला और दिया। बाबा जी ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा, आप जरा पढ़ दीजिए क्या लिखा है। बोले ये मेरा बंगला उसी जगह पर, यही कॉर्नर पर, यहाँ ये बंगले का नाम ये है, बस माँ आए तो भेज देना, मैं 2 से 4 बजे तक घर में होता हूँ। परमहंस बिल्कुल सहज बोले, अच्छी बात है, लेकिन भाई मैंने तुम्हारा पता मांगा, तुम्हारे बंगले का पता नहीं मांगा। ये तो तुम्हारे बंगले का पता है कि जहां तेरी कोठी है, तेरा तेरा मकान है, तुम्हारा पता मुझे चाहिए। हैरान आदमी, दूसरा कार्ड निकाल कर दिया ऑफिस का, बोले वो तो तुम्हारे ऑफिस का पता है, तुम्हारा पता क्या, तुम कौन हो? जब तुम्हें तुम्हारा पता मिल जाएगा शेठ, तब मुझे काली मैया को भेजना नहीं होगा, मां तेरे घर अपने आप चली आएगी। तुम्हें आज तक अपना पता नहीं, तुम्हें अपने ऑफिस का, दफ्तर का, अपने कारोबार का पता है, लेकिन हे शेठ, तुम्हें तेरा पता नहीं कि तुम हो कौन। तो मेरे भाई बहन, थोड़ा नित्य समय निकालो और भीतर देखो कि हम वास्तव में क्या है। मन में झांको, स्वभाव को देखो। बड़ी बड़ी जगत बड़ा उल्टा जी रहे हैं, इसलिए इतनी भक्ति करने के बाद भी हम देखते रहे लोग अशांत है, बीमार है, बड़ा उल्टा जिए जा रहे। हमको दूसरा का बहुत ख्याल है, अपने स्वभाव का ख्याल है, अपने स्वभाव के बारे में दूसरे लोग कहेंगे कि आपका स्वभाव तो ऐसा है, तब पता लगता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है। जो हमारा जन्म जन्म का मौलिक स्वभाव, उससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं, उसके लिए दूसरा प्रमाण पत्र देता है। नित्य जागो अपने मन में,